ओम शांति। प्यारे बाबा ने जो मुरली हम सबके सम्मुख चलाई, उसमें बाबा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का, लेकिन एक छोटी सी लाइन में इशारा दिया। बाबा ने कहा कि प्रकृति ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। पहले तो बाबा कहते थे कि प्रकृति बाबा के पास आती है, बाबा को पूछती है, तो बाबा प्रकृति को क्या जवाब दे। लेकिन अब तो बाबा ने कहा कि प्रकृति पूछती नहीं है, लेकिन प्रकृति ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे चारों ओर संसार में मृत्यु का बाजार गर्म है। ऐसे तो ये बाजार पिछले कई वर्षों से गर्म है, लेकिन जैसे बाबा ने इससे पीछे वाली मुरली में कहा था कि जल्दी जल्दी टिकट कट रही है, माना आत्माएं बहुत जल्दी जल्दी देह छोड़ करके जा रही हैं। तो कईयों के मन में ये प्रश्न पैदा होता है कि अकाल मृत्यु इतनी संख्या में और इतनी जल्दी जल्दी क्यों होती हैं, इस अकाल मृत्यु का क्या कारण है। तो प्यारे बाबा ने चारों युगों के ज्ञान के आईने में हमको हर प्रश्न का उत्तर दिया है। बाबा ने एक पूरी मुरली अकाल मृत्यु पे चलाई थी और उसमें बाबा ने इसके विभिन्न पहलुओं पे बहुत अच्छा प्रकाश डाला था। जब बाबा से ये बात पूछी गई थी तो बाबा ने कहा था कि विदेश की बात अलग है, लेकिन भारत में तो जो परिवर्तन की प्रक्रिया होगी उसमें दो बातें विशेष हैं, एक तो प्रकृति और दूसरा ग्रह युद्ध, और इन दोनों में ही अकाल मृत्यु होती है, क्योंकि जो एटॉमिक वॉर होता है वो तो फिर सबको एक साथ ले जाता है, लेकिन भारत में विशेष इन दो शक्तियों का पार्ट है। तो बाबा ने कहा था कि द्वापर युग से, जब से मनुष्य आत्माएं देह अभिमानी बनी, तब से आत्माओं ने अनेक प्रकार के विकर्म किए। तो बाबा ने कहा कि वो विकर्म ऐसे थे जो अगले जन्म में पूरे के पूरे नहीं भोगे गए, उनके हिसाब किताब चुकतू नहीं हुए और वो बच गए, और बचे हुए विकर्मों को फिर अगले जन्म में, फिर अगले जन्म में। लेकिन ये जो विकर्म थे द्वापर के शुरू में तो कम होते थे, और कलयुग का अंत आते आते तो देह अभिमान बढ़ गया, विकार बढ़ गए, परिस्थितियां भी तमोगुणी होती गई, जिसके कारण मनुष्यों के विकर्मों का बोझ बहुत ज़्यादा मात्रा में उनके सिर पे रहा। और अब ये आखिरी जन्म आ गया, कलयुग का अंत, अब सब आत्माओं को वापस घर लौटना है। तो बाबा ने कहा सबको अपने हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। जैसे कोई आदमी अगर ये कहे कि भाई मैं तो अभी यहाँ 10 साल हूँ, तो जो लोग उससे पैसा मांगने वाले होंगे, जिनका कर्जा उसने लिया होगा, वो सोचेंगे कोई बात नहीं, अभी तो ये 10 साल है, इस साल नहीं देगा तो अगले साल देगा, अगले साल नहीं तो उससे अगले साल देगा। अगर उनको ये पता पड़े कि ये आदमी तो बस अभी 2 मास में ही जाने वाला है, तो सब लोग क्या करेंगे, अरे भाई पहले हमारे पैसे दे के जा, पहले हमारा कर्जा उतार के फिर जाना। तो उसके दरवाजे पे कर्ज मांगने कर्ज चुकतू कराने वालों का तांता लगा रहेगा। तो इसी तरह से पिछले जन्मों में तो ड्रामा के नियम प्रमाण हमें और जन्म लेने थे, इसलिए सारे हिसाब किताब एक साथ नहीं आए, लेकिन अब तो ये आखिरी जन्म है, ड्रामा की क्लोजिंग है, तो जितने भी हिसाब किसी भी आत्मा के बाकी हैं, चाहे वो ज्ञानी है और चाहे संपर्क वाला है, चाहे संबंध वाला है, कोई भी है, तो उसके जितने भी हिसाब बाकी हैं वो इसी अंतिम जन्म में चुकतू होने वाले हैं, होने हैं। और चुकतू होने का तरीका क्या है, जैसे किसी को दुआ मिलती है तो क्या कहते हैं, भाई तुम्हारी लंबी आयु हो। बहुत करके भारत में तो लंबी आयु का आशीर्वाद दिया जाता है, तो इसका मतलब लंबी आयु होना एक भाग्य की बात है। सतयुग में भी 150 साल आयु थी, त्रेता में 125, 100 और 125 के बीच में थी, लेकिन अभी तो घटती घटती ऐसी आयु हो गई है कि अभी अभी जन्म और अभी अभी देह का त्याग। तो वास्तव में अभी वो आशीर्वाद भी एक प्रकार से ना तो फलीभूत हो रही हैं, और आशीर्वाद लेने योग्य आत्माओं के कर्म भी नहीं रहे हैं, और आशीर्वाद देने वालों की जबान में इतनी शक्ति भी नहीं है कि उनके आशीर्वाद फलीभूत हो जाएं। इसलिए बहुत जल्दी जल्दी जन्म और बहुत जल्दी जल्दी मृत्यु होती है, और जन्म भी दुखदाई और मृत्यु भी दुखदाई। जिन लोगों के अंतिम समय की घड़ियां उनके सामने हैं, ऐसे तो कहते हैं बुढ़ापा अपने आप में एक लंबी बीमारी है, लेकिन बुढ़ापा भी प्लस बीमारी भी और प्लस घर का माहौल भी संवेदनाहीन, असहानुभूतिपूर्ण, तो परिणाम क्या निकलता है? अनेक प्रकार के चिंतन, अनेक प्रकार की दुविधा में मानव आत्मा देह का त्याग करती है, और इसी प्रकार से जन्म है। बाबा कहते हैं सतयुग में जन्म ऐसे होता है जैसे माखन से बाल, लेकिन बाबा ने ही कहा कलयुग में जन्म भी बड़ा दुखदाई है। तो ये कर्मों के हिसाब का परिणाम है, और बाबा ने ये भी कहा कि जैसे कोई दवाई छिड़कते हैं और उससे बहुत सारी चींटियां, मच्छर, कॉकरोच एक ही मिनट में मर जाते हैं, तो आज मनुष्य भी ऐसा हो गया है, कोई एक झटका आता है या कोई ऐसा भोजन, कोई ऐसी वायु, कोई ऐसा पानी जिसके कारण एक ही मिनट में सामूहिक रूप में बहुत सारी आत्माएं चली जाती हैं। तो बाबा ने कहा जैसे मच्छरों की मृत्यु की कोई गिनती नहीं होती है, ऐसे ही आदमी का जीवन भी आज मच्छर की तरह हो गया है, उसकी मृत्यु की भी कोई काउंटिंग और उसके लिए भी कोई अफसोस। अगर कोई कह दे कि भाई वहाँ पे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो सुनने वाला यही कहता है रोज ही होती रहती है, कौन सी नई बात है। फिर बाबा ने कहा कि ऐसे तो कर्मों का हिसाब किताब धर्मराजपुरी में भी चुकतू होगा, बाबा कहते हैं, लेकिन धर्मराजपुरी में हिसाब चुकतू होने में और शरीर सहित हिसाब चुकतू होने में अंतर है। बाबा ने कहा धर्मराजपुरी में आत्मा अकेली अपने कर्मों का हिसाब भोगती है अकेली, लेकिन साकार शरीर में कुछ हिसाब किताब वो अकेली भोगती हैं और कुछ हिसाब किताब प्रकृति के साथ और अपने संबंधियों के साथ भोगती हैं। धर्मराजपुरी में संबंधी नहीं होंगे, प्रकृति नहीं होगी, तो इनके साथ जो हमारे हिसाब किताब होंगे वो तो हमको नीचे ही पूरे करके फिर ऊपर जाना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा भोगना तीन प्रकार की है, एक है आत्मा स्वयं स्वयं से भोगती है, वो यहाँ साकार दुनिया में भी है, जैसे कोई बीमारी है तो बाबा ने कहा जो बीमारी है उसमें तो किसी और का कनेक्शन नहीं है, कैंसर हो गया, अल्सर हो गया, बहुत प्रकार की भयानक बीमारियां हैं, लाइलाज बीमारियां भी हैं और नई नई बीमारियां भी हैं जिनके बारे में डॉक्टरों को कुछ भी पता नहीं है, और ऐसी बीमारियां भी हैं जिनके कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते लेकिन अंदर में शरीर खोखला हो जाता है। तो ऐसी शारीरिक बीमारियों की भोगना चुकतू करने का एक तरीका ये है। शारीरिक के साथ मानसिक बीमारियां भी हैं, मन का पागलपन, मन की सोचने की शक्ति खत्म, स्मृति की शक्ति खत्म, और इससे भी बड़ी बात है बाबा ने कहा जैसे लोग कहते हैं भूत की प्रवेशता, तो किसी ऐसी आत्मा की प्रवेशता होने पे मानव आत्मा का क्या होता है, कितनी परेशान होती है। तो एक तरीका तो ये है कि व्यक्ति मानसिक शारीरिक बीमारियां भोगता है, दूसरा बाबा ने कहा, दूसरा तरीका है प्रकृति के द्वारा हिसाब किताब चुकतू होना। जैसे बाबा कहती हैं कि प्रकृति ने अपना काम शुरू कर दिया है, तो हम देखते हैं कि किसी ना किसी कोने में, दुनिया के किसी ना किसी कोने में प्रकृति अपना क्रोध प्रकट करती ही रहती है। कभी भूकंप की बात सुनते हैं, पिछले दिनों हमने सुना विदेश में एक स्थान पे भूकंप आया, इसी नए साल में ही आया, और लाखों आत्माएं उसमें चली गई। आत्माएं गई लाखों, लेकिन उनके जाने से उनके पीछे वाले कितने होंगे जिन्हें कष्ट होता है, वो तो फिर कई लाख के अंदाज में होते। और भूकंप के कारण जो माहौल बिगड़ता है, उसके कारण जो जीवित हैं उनको भी बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। तो केवल एक भूकंप के कारण करोड़ों आत्माएं प्रभावित होती हैं। इसी तरह से प्रकृति के और भी कई प्रकार के प्रकोप हैं। अब पानी स्वच्छ नहीं मिलता है, पानी के कारण कितनी प्रकार की बीमारियां हैं। हवा स्वच्छ नहीं है, उसके कारण भी बहुत प्रकार की बीमारियां हैं। अन्न पौष्टिक नहीं है, सात्विक नहीं है, उसके कारण भी बहुत सारी बीमारियां हैं। चीजें सब बाजार में उपलब्ध हैं। कहते हैं एक जमाना था लोग खेती की चीजें खा करके ठीक हो जाया करते थे, बीमारी ठीक हो जाया करती थी, लेकिन आजकल उन खेती की चीजों में भी ऐसा केमिकल है कि ठीक आदमी भी उन्हें खा करके बीमार हो रहा है। तो जो चीज औषधि थी वो चीज बीमारी बन गई है। इसी प्रकार से कहीं अति गर्मी, कहीं अति सर्दी, और कई बार ऐसे भी समाचार सुनने को मिलते हैं कि जमीन में अचानक गड्ढा हुआ और जैसे ऊपर रखी हुई चीज, किसी व्यक्ति ने अपना ट्रैक्टर खड़ा किया और अचानक भूमि धंस गई और ट्रैक्टर नीचे चला गया, कई फीट नीचे चला गया, भैंस धंस गई कई फीट नीचे चली गई। अब ये किस प्रकार का प्रकृति का दंड है जिसका कोई चिन्ह नहीं, अचानक जमीन धस जाती है। तो कारण ये है कि जमीन में, पानी में, सब चीजों में मनुष्य ने अपनी वृत्तियों का भी और अपने स्वार्थ का भी जहर घोला हुआ है। तो वो किसी ना किसी रूप में लंबे काल तक जब हम करते ही हैं तो हमारे सामने आता है। फिर उसमें कहीं सामूहिक रूप से लोग अकाल मृत्यु में जाते हैं और कहीं इक्का दुक्का लोग भी जाते हैं। तो ये प्रकृति के द्वारा आत्माओं को सजा मिल रही है। और इसी प्रकार से थोड़े दिन पहले हमने मैगजीन में एक अनुभव डाला था कि कोई एक बहन अपनी छत पे थी और अचानक आसमान से बिजली गिरी, सारे मकानों में दरार आ गई और जो इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड थे उनमें भी जैसे करंट जैसे खत्म हो गया, बहुत कुछ नुकसान हुआ। लेकिन वो बाबा की याद में थी, अकेली थी अपने घर में, उसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। अब प्रकृति का ये भी एक रूप है, आसमान से सुखदाई बरसात बरसती रही है, लेकिन वहाँ ओले गिर जाते हैं, बिजली गिर जाती है, तेजाबी बरसात हो जाती है, बहुत तेज आंधी तूफान आता है, तो उसके कारण भी व्यक्ति को भी नुकसान होता है, धन को भी नुकसान होता है। तो ये सब कर्मों के हिसाब किताब है। अब कोई कह सकता है कि भाई प्रकृति ने हमें ही तकलीफ क्यों दी, अब इसके पीछे भी किसको कब तकलीफ मिलेगी। प्रकृति की तकलीफ तो वास्तव में आगे पीछे थोड़ी बहुत वर्तमान समय सबको मिल ही रही है, लेकिन जो आत्माएं बाबा की याद में रहती हैं, और जैसे बाबा ने कहा कि जो प्रकृति पति की स्थिति में स्थित होगा उसका प्रकृति कुछ नहीं बिगाड़ेगी, अपने मालिक का कुछ नहीं बिगाड़ेगी वो, तो हमने लंबे समय तक उसको शुभ वाइब्रेशन दिए, उसका मिसयूज नहीं किया, उसके लिए शुभ सोचा और उसको अपनी साथी मान करके उसके लिए भी मन में प्रेम भाव जागृत किया, तो ऐसी आत्मा के ऊपर आई हुई विपत्ति भी टल जाएगी। दो व्यक्ति साथ साथ जाएंगे, एक को नुकसान होगा उसी प्राकृतिक आपदा में और दूसरे को नुकसान नहीं होगा, ये भी बाबा की गारंटी है। तो इस प्रकार से प्रकृति अपना रूप दिखा रही है, दिखाने लगी है, और हम बच्चे अपने योग बल से प्रकृति के किसी भी रूप से प्रभावित ना हो, इसके लिए बाबा ने हमें बहुत सारी युक्तियां बताई हैं और उनका हम पालन भी करते हैं। और कई बार समाचार सुनते ही रहते हैं कि कैसे प्रकृति पति होने के नाते प्रकृति ने बहुत सहयोग दिया। अब एक तीसरा जो सजा भुगतने का कारण बाबा ने बताया वो है संबंध संपर्क रिलेशन। हम देख रहे हैं कि आज के संसार में हर घर में हर परिवार में थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट, थोड़ी बहुत अशांति, थोड़ा बहुत मनोमुटाव और थोड़ा बहुत आपस में कलह क्लेश है ही। हर व्यक्ति यही समाचार सुनाएगा कि मेरा अमुक संबंधी या अमुक व्यक्ति उसके साथ बोल चाल मेल जोल नहीं है या ये है, इस प्रकार की बातें अपन सुनते हैं। थोड़े दिन पहले एक मैगजीन निकलती है वुमन ऑन टॉप, उसमें हमारी दादी जानकी का इंटरव्यू छपा था, तो महिलाओं के बारे में है वो पत्रिका, बहुत महंगी पत्रिका है, लेकिन चूंकि दादी का इंटरव्यू छपा था तो इंटरव्यू दिखाने के बहाने वो हमको देखने को मिली। तो उसमें हमने एक कॉलम पढ़ा जिसका नाम था मझदार, और उस मझदार में वो एक पन्ने में किसी ऐसी महिला की कहानी डालते हैं जिसको जीवन में धोखा मिला, ठोकर मिली, या जीवन में किसी व्यक्ति के कारण, परिस्थिति के कारण इतना बड़ा दुख आया कि अब वो संभल नहीं पा रही है, और वो कहानी लिख करके उसके नीचे उन्होंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें लिखा कि अगर किसी के पास भी समस्या का समाधान हो तो वो हमें लिख करके भेजे, हम उसको अगले अंक में छापेंगे। तो ये उनका हर महीने छपता होगा, हमारे पास तो एक ही इश्यू आया था, आगे क्या हुआ मालूम नहीं, और हमने उस कॉलम का समाधान लिख करके उनको भेजा। हमने सोचा छपे तो भी ठीक, नहीं छपे तो भी ठीक, लेकिन कुछ लोग जो पढ़ेंगे उन्हें मालूम तो पड़ेगा ना कि हर समस्या का आध्यात्मिक समाधान हो सकता है। तो हरेक व्यक्ति किसी ना किसी संबंध से हिसाब किताब चुकतू कर रहा है, अनेक प्रकार की अनहोनी बातें संबंधों के बीच में घट रही हैं। रोज हम सुनते हैं, देखते हैं, आश्चर्य आता है, अरे अचानक ये कैसे हो गया, अचानक किसी की मृत्यु हो गई, किसी को मार दिया गया, किसी को जला दिया गया, किसी को उठा लिया गया, किसी का हक छीन लिया गया, किसी के साथ अन्याय किया गया, बहुत प्रकार की बातें हम सुनते रहते हैं। तो इनका कारण क्या है? हमारे जैसे बाबा ने कहा पूर्व जन्मों के कर्म के हिसाब किताब, और अगर आध्यात्मिक ज्ञान हो तो वो हिसाब किताब चुकतू हो सकते, लेकिन आज की दुनिया में आध्यात्मिक ज्ञान तो है नहीं, लौकिक पढ़ाई से कर्मों के हिसाब तो कटते नहीं है, इसलिए पढ़े लिखे लोग, अच्छे घरों के लोग भी कर्मों के हिसाब किताब में उलझे हुए मिलते हैं और उनके परिणाम स्वरूप दुखी हुए मिलते हैं। जैसे मैंने जिस मैगजीन की बात की उसमें उस महिला की क्या समस्या थी, एक कन्या उसमें दिखाई, एक कन्या है उसने PhD की हुई है और वो छुट्टियों में इतना पढ़ के और थोड़ा थक गई तो मैं थोड़ी रिलैक्स हो जाऊं, ये सोच करके वो विदेश में अपनी बहन के साथ मिलने जाती है। तो प्लेन में जब जाती है तो प्लेन में ही किसी व्यक्ति के साथ उसकी अटैचमेंट होती है और 3-4 दिन में ही वो आपस में फैसला करते हैं कि हम शादी करेंगे। घर वाले उसको बहुत मना करते हैं, बहन ने भी बहुत मना किया, जितने भी जान पहचान के शुभ चिंतक थे सबने मना किया, लेकिन उस बहन ने अपनी बात को करके ही छोड़ा और फिर वो अमेरिका चली गई, उसको एक बच्चा हुआ। लेकिन उसके बाद उसको लगा कि इस आदमी का तो कर्म धर्म चरित्र कुछ भी अच्छा नहीं है, तो वो अमेरिका छोड़ करके बच्चे समेत इंडिया में आ गई। लेकिन उस आदमी ने उसके ऊपर मुकदमा कर दिया कि ये बच्चा विदेश में पैदा हुआ है, ये अमेरिका का नागरिक है, इसलिए ये बच्चा भारत में नहीं रहेगा, अमेरिका में ही रहेगा, ऐसा करके। तो अब वो महिला उस बच्चे को लिए लिए छिपती फिर रही है और पुलिस उसको ढूंढ रही है। तो सवाल ये था कि क्या इस महिला के जीवन में कभी स्थिरता आएगी और ये क्या कर सकती है, क्या समाधान है इस समस्या का। तो बड़ी विचित्र प्रकार की समस्याएं संबंधों में, ये सब समस्याएं संबंधों की मिलेंगी। अनजान व्यक्ति से समस्या नहीं आती है, क्योंकि जो कर्म का हिसाब किताब चुकतू कराने वाला है वो कोई ना कोई संबंधी बन करके चुकतू कराता है। और वो जीवन के किस मोड़ पर संबंध में आ जाए, व्यक्ति 25 साल तक सुखी था, अचानक बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे के कारण हिसाब किताब निकल आए, अचानक घर में बहू आई, अचानक कुछ और रिश्ता जुड़ा किसी के साथ, अचानक कोई ऐसा दोस्त बना, कई तरह से अचानक इस प्रकार के हिसाब किताब निकलते हैं। और तब व्यक्ति सोचता है कि ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन बाबा के ज्ञान से व्यक्ति समय से पहले जाग जाता है, समय से पहले चेत जाता है। अब जैसे हम इसी समस्या के ऊपर विचार करते हैं, समस्या का मूल कारण क्या है, देह अभिमान। अब होता क्या है कि व्यक्ति केवल ऊपर के आवरण को देख करके और समझता है कि भाई जैसा व्यक्ति ऊपर के आवरण में चमकदार है, भीतर से भी चमकदार होगा। लेकिन कहते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऊपर का आवरण सुंदर हो सकता है, अंदर कालापन हो सकता है। अब वो कालापन को परखने की शक्ति वो तो केवल ज्ञान से आती है, जब हम आत्मा को देखें, आत्मा को परखें, आत्मा के गुणों को समझें और आत्म दृष्टि हो हमारी, तब तो व्यक्ति धोखा नहीं खाता। लेकिन अगर वो देह को देखता है या धन को देखता है या पद को देखता है तो धोखा खाने की मार्जिन है। और दुनिया में जितने भी लोग धोखा खाते हैं वो इन्हीं चीजों को देख करके, इन पे आकर्षित होकर के धोखा खाते हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार सावधान करता है कि बच्चे किसी के पद पे प्रभावित नहीं हो, किसी की चमड़ी पे प्रभावित नहीं हो, किसी की दमड़ी पे प्रभावित नहीं हो, जो गुण है वो आत्मा में है। कई बार बाबा मुरली में ये भी कहता है, देखो विदेशी लोग कितने सुंदर होते, लेकिन बाबा साथ में ये भी कहता है उनमें दैवी गुण तो नहीं है ना, अंतिम जन्म में भी शरीर सुंदर है लेकिन आत्मा। अब लक्ष्मी नारायण की तो आत्मा भी सुंदर है और शरीर भी सुंदर है। तो जो व्यक्ति आत्मा को परखना जानता है वो तो धोखा नहीं खाएगा और केवल ऊपर से देखेगा, हिसाब किताब निकलेगा, बाद में वो दुखी भी होगा। और जैसे वो एक कहावत है कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोई, रहीमन बिगड़े दूध को मथे ना माखन होए। रहीम जी का एक दोहा है कि जो बिगड़ जाता है, दूध फट जाता है, उसको आप जितना मर्जी मथ लो उसमें से माखन नहीं निकलता, बिगड़ गया वो। ऐसे ही एक बार बात जब बिगड़ जाती है उसके बाद चाहे आप कोर्ट कचहरी कर लो, चाहे पंचायतें कर लो, चाहे आपस में मीटिंग कर लो, मन में जो गांठ पड़ जाती है, जो दुराव आ जाता है, उसका समाधान बड़ा मुश्किल। तो हम देख रहे हैं कि इन तीन तरीकों से आत्माओं के हिसाब किताब चुकतू हो रही है। अब बाबा हम बच्चों को पूछते हैं कि आप बच्चों की क्या अवस्था है, दुनिया में तो हो रही है ठीक है, लेकिन जो बाबा के ज्ञानी बच्चे हैं, जिनके पास आदि मध्य अंत का ज्ञान है और सर्वशक्तिवान की शक्तियां हैं, तो बाबा अपने उन बच्चों से पूछता है कि क्या वो भी किसी किसी हिसाब किताब में उलझे पड़े हैं, क्या उनको भी प्रकृति आके दुखी करती है, क्या उनको भी संबंधों में ठोकरें और चोटें और संबंधों के कारण दुख मिलता है। ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना है। अब हम अपने आप से पूछते हैं, लेकिन हमें कैसे पता पड़े कि हमारे हिसाब किताब चुकतू हो गए कि नहीं हुए, हमारे कितने हिसाब बाकी हैं, हम उन्नति की ओर जा रही हैं या नीचे की ओर जा रही हैं, क्या हमारे पास इसके लिए दर्पण है, आईना है। तो उसके लिए भी बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई है। बाबा कहते हैं कि अपनी स्थिति को चेक करने का दो प्रकार का आधार है। एक तो वो बाबा के बच्चे हैं जिनकी बाबा से बहुत लगन है, लेकिन उनको कोई ना कोई लौकिक संबंधियों का बंधन है और उस बंधन के कारण वो आगे बढ़ने में थोड़ा मुश्किल महसूस करते हैं। तो बाबा ने कहा, एक तो इस प्रकार की आत्माएं होती हैं किसी और के द्वारा बंधन लगाया जाता है, ये भी हमारे कर्मों का हिसाब है। हो सकता है पिछले जन्म में हमने उनको रोका हो, भक्ति करने से रोका होगा, मंदिर जाने से रोका होगा, अच्छे कर्म करने से, दान पुण्य करने से रोका होगा। तो वो आत्मा भी सोचती है, तूने पिछले जन्म में मुझे नहीं करने दिया तो इस जन्म में तुम कैसे कर सकती हो। हो सकता है ना ऐसा, कर्म का हिसाब तो चालू रहता है। दूसरा, बाबा ने कहा कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिनके ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति का बंधन नहीं है, लेकिन उनको भी तीन प्रकार के बंधन है। एक बंधन है अपने पुराने स्वभाव संस्कार का, दूसरा बंधन है संग दोष का, और तीसरा बंधन है वायुमंडल का, वातावरण का। अब हमको चेक करना है कि हमको आगे बढ़ने में इन तीनों में से कौन सी चीज बाधा डालती है। एक है अपना स्वभाव संस्कार। अपने स्वभाव संस्कार में वो सारी बातें आ जाती हैं जो हमने इस जन्म में ज्ञान में आने से पहले की, और पिछले जन्मों की भी कुछ धुंधली बातें संस्कार रूप में पड़ी ही रहती हैं अंदर। बाबा कहते हैं जन्म जन्म के संस्कार। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का ज्ञान में आने से पहले क्रोध का स्वभाव था, इतना क्रोध का स्वभाव था कि वो ना समय देखता था, ना व्यक्ति देखता था, ना परिस्थिति देखता था, और छोटी छोटी बात में वो क्रोध करता था। अब वो एकदम ज्ञान में आ गया। अब ज्ञान तो बाबा कहता है सेकंड का है, लेकिन क्रोध छूटना क्या वो भी सेकंड का है? जैसे ही ज्ञान में आ गए तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पुराना स्वभाव संस्कार चला जाएगा। अब यहां भी क्या होगा, कोई बात पसंद नहीं आएगी तो वही पुराना संस्कार इमर्ज होगा। कोई बात अपने अनुकूल नहीं होगी, चाहता नहीं है वो, वो जानता है क्रोध खराब चीज है, मुझे नहीं करना है, क्रोध मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा, बाबा ने मना किया है। और देवताओं में क्रोध नहीं होता, मुझे तो देवता बनना है, उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती है कि वो क्रोध करे, लेकिन पिछले 20 साल का, 25 साल का उसका दोस्त है ये, तो वो बार बार आके उसको कहता है मैं खड़ा हूं ना, मेरा सहयोग ले लेना, मैं तेरी बाजू में ही खड़ा हुआ हूं। तो वो कहता है अरे इतना अच्छा दोस्त और मेरी बाजू में आके खड़ा हो जाता है और मेरे को बिन मांगे सहयोग देता है तो मैं ले लेता हूं। तो फिर वो उसका सहयोग ले लेता है। सहयोग लेने के बाद फिर जब उसको होश आता है, अरे मैंने तो श्रीमत का उल्लंघन कर दिया, ये आज के बाद तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, चिट्ठी लिख करके रखेगा, दो चार को बताएगा, प्रण करेगा, अमृत वेले योग लगाएगा, मैं नहीं करूंगा नहीं करूंगा, तो वो दोस्त डर जाएगा, बोलेगा ये तो पक्का हो गया लगता है। फिर एक दिन के बाद, दो दिन के बाद तो वो थोड़ा डर के रहेगा, तीसरे दिन वो फिर आ जाएगा, क्योंकि तीसरे दिन उसने देखा ये ढीला हो गया, फिर आके कहेगा मैं खड़ा हूं ना। तो वो बेचारा, जो उसकी शक्ति ज्ञान में आगे बढ़ने में लगनी चाहिए थी, कोई नई पॉइंट सीखने में, कुछ धारणा करने में और कुछ सेवा करने में लगनी चाहिए थी, उसकी वो सारी की सारी शक्ति उस दोस्त से पीछा छुड़ाने में लगी हुई है। योग करता है तो उसी की चर्चा, मेरा पीछा छूट जाए, कोई सेवा करता है तो भी कहता है बाबा मैं इतनी सेवा करूं मेरा इस क्रोध से पीछा छूट जाए। तो आगे बढ़ने के बजाय वो पुराना स्वभाव फिर पांव पीछे खींच लेता है। इसी तरह से सब आत्माओं में ज्ञान में आने से पहले के कम या अधिक संस्कार थे हैं, किसी ने तो उनको जल्दी जीत लिया और कोई संघर्ष में है। तो वो जो संघर्ष है वो हमारी शक्ति को कम करता है, समय को भी नष्ट करता है, और जब हम उसको जीत नहीं पाते हैं तो हीन भावना भी आ जाती है। तो इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को यही कहा है कि जिस विकार की प्रबलता है उस विकार से संबंधित बाबा की बातों को बार बार कलेक्ट करो। जैसे मान लो क्रोध की प्रबलता है, लोभ की प्रबलता, आलस की प्रबलता है, तो बाबा की बातों को इस तरीके से पढ़ो, सुनो, लिखो, संग्रह करो। मान लो आलस है तो आलस के बारे में बाबा ने क्या क्या बोला उसका पूरा स्टॉक अपने पास रखो। क्रोध के बारे में क्या क्या बोला है पूरा स्टॉक रखो। लोभ के बारे में क्या क्या बोला है, जैसे किसी आदमी को बीमारी है, किसी आदमी को हार्ट की बीमारी है, तो उसके घर में सारी दवाइयाँ कौन सी मिलेंगी, छोटी मोटी और भी होगी उसको, लेकिन प्रोमिनेंटली हार्ट की प्रॉब्लम है, तो सारी दवाइयाँ किससे कनेक्टेड मिलेंगी, हार्ट से कनेक्टेड मिलेंगी। कि मैगजीन पढ़ेगा, किताब पढ़ेगा, कोई हार्ट का लेख होगा झट पढ़ेगा, टीवी पे कोई हार्ट की बात आएगी तो झट देखेगा, अगर कोई हार्ट का डॉक्टर शहर में आया हुआ हो तो झट उसका प्रवचन सुनने जाएगा। उसको बार बार ध्यान रहता है ना कि ये मेरी बीमारी है, मेरे को इसमें कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए, कुछ और रिलीफ मिल जाए। तो हमको भी डायग्नोस करना है कि पुराने संस्कार में मुख्य प्रोमिनेंट संस्कार कौन सा है, और उसके लिए मुझे बहुत सारी दवाइयाँ इकट्ठी करनी है। जब हल्का उसका प्रभाव आए तो हल्की दवाई खा लो, और जब उसका सीवियर अटैक आए तो फिर थोड़ा ज़्यादा हाई डोज पी लो। किसी दिन बहुत ज़्यादा आ जाए तो फिर क्या करना पड़े, हाई डोज भी तो पीना पड़े ना। लेकिन अगर हम लगे रहे, क्योंकि शरीर को तो अपन दोबारा स्वस्थ नहीं कर सकते, एक बार जो हो गया वो तो छूट ही जाएगा, लेकिन आत्मा को तो दोबारा स्वस्थ किया जा सकता है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका अमृत वेले का योग है। बाबा ने कहा है कि किसी बच्चे में कोई भी कमजोरी है तो बाबा बंधा हुआ है अमृत वेले उस बच्चे को सहयोग देने के लिए, बशर्ते कि बच्चा सही मनस्थिति में लगन से बैठे। लगन एक ऐसी अग्नि है जो हमारे स्वभाव संस्कार को जला देती है, और बाबा ने गारंटी की हुई है कि अमृत वेले बाबा बच्चों को सब कुछ जो वो कहती हैं, मांगती हैं, वो सब कुछ करता है। तो अगर हम लगातार एक संकल्प को लेकर के कि मेरे में शांति की शक्ति बढ़े, शीतलता की शक्ति बढ़े, जो भी विकार है उसके ओपोजिट योग लगाते हैं, तो धीरे धीरे उसका फोर्स कम होता है, कम होते होते एक बार एक दिन बिल्कुल खत्म हो जाता है। एक तीसरा और भी तरीका है, अब हमने अपने अज्ञान काल के जीवन में उस विकार को लेकर के जो भी गलतियां की हों, उन सब गलतियों को, क्रोध में आके किसी को मारा पीटा, लोभ में आके कोई चोरी झूठ किया, अहंकार में आकर किसी को नीचा दिखाया, जो भी किया, और वो बातें हमें याद हैं और हमको मालूम है कि हमने अज्ञानता के कारण ये गलत किया था, तो वो पूरी की पूरी लिख करके बाबा को दे दो, बिल्कुल सच्चाई से, मैंने इस विकार के वशीभूत होके अज्ञान काल में इसको दुख दिया, इसको सताया, इसको ये किया। तो बाबा कहते हैं सच्चाई से लिख करके देने से भी वो चीज़ आधी कम हो जाती है, आधा बाबा कम करेगा, फिर और हम पुरुषार्थ करेंगे तो वो चीज़ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सच्चे दिल पे साहेब राजी, आज भी बाबा ने कहा था, जो बाबा को याद करते हैं, जिनका दिल सच्चा है, बाबा भी उनको याद करता है, बाबा को वो बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, तो कोई भी कमी कमजोरी हम बाबा को सच्चे दिल से सुना दे। तो एक तो ये हो गया, दूसरा था संग दोष। अब कई बार क्या होता है कि व्यक्ति बड़ा अच्छा होता है, उसको लगन भी आगे बढ़ने की होती है, और उसका चित्त भी साफ है, कोई पुराना स्वभाव संस्कार नहीं है, बहुत उसका पवित्र जीवन रहा है, दुनिया के हिसाब से वो बहुत अच्छी आत्मा है, लेकिन कोई एक संग ऐसा है, संग दोष, महीना भर उस संग दोष से बचा रहेगा तो ठीक चलेगा, लेकिन अचानक महीने बाद, दो महीने बाद उस संग का दोष लगता है और फिर की कमाई सारी की सारी डाउन आ जाती है। जैसे हमने एक नाटक देखा था कि एक बच्चा होता है बहुत सात्विक, लेकिन उसके क्लास के जो साथी हैं, स्कूल के, कॉलेज के जो साथी हैं, अब उस भोले भाले को बहला फुसला लेते हैं, आओ आओ ये कर, ये खाएंगे, ये पियेंगे, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप खिला पिला देते हैं, वैष्णों की चीज़ें, ये वो चीज़ें, अब वो इतना सेंसिटिव है और उसका शरीर उनको झेलता नहीं है, अब हॉस्पिटल में एडमिट है वो। तो डॉक्टर लोग कहती हैं कि भाई इसके दोस्तों को हॉस्पिटल में नहीं आने देना, हम इसका पूरा इलाज करेंगे और इसको समझा बुझा के इसको इस आदत से छुड़ाएंगे। लेकिन वो दोस्त लोग क्या करती हैं, कहते हैं डॉक्टरों ने, डॉक्टरों की आँख बचा करके भी हम जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे हाथ से निकल जाए। तो वो ऐसे टाइम में किसी रूप में बेस बना करके मिलने आते हैं उससे, और पुड़िया में कोई ना कोई चीज़ ले आती हैं। तो वो कहता है मैं नहीं खाऊंगा। अरे तू नहीं खाएगा, हमारा साथ छोड़ देगा, तूने तो कहा था कि मैं तो आपका सदा का साथी हूँ, तू इतना जल्दी वायदा भूल गया। अरे इसको खा के तो देख, ये तेरी बीमारी सब खत्म, तेरे को स्वर्ग जैसा सुख मिलेगा, देख मैं खाता हूँ, देख मेरे को कितना। तो वो जो भोली भाली आत्मा है बेचारी संग दोष में आ जाती है, डॉक्टर ठीक करने में लगे हुए हैं और वो संग दोष वाले आकर के फिर उसको हेल्थ को उतना ही बिगाड़ जाते हैं। फिर डॉक्टर प्रयास करते हैं, आखिरी में क्या होता है कि वो व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, एक नाटक था। अब संग दोष में किसी भी प्रकार का हो, बहुत फिल्म देखने का हो, बहुत बाजार घूमने का हो, बहुत ऐसी वैसी चीजें खाने का हो, बहुत फैशन करने का हो, या और किसी भी प्रकार का बहुत फिजूल खर्ची का हो, दिखावे का हो, तो ऐसी आत्माओं का अगर संग लग जाता है तो भोली भाली आत्मा भी उसमें, अपने में है नहीं वो संस्कार, लेकिन संग दोष के कारण उसमें आ जाता है, उसकी ट्रैप में आ जाती है, पुरुषार्थ करेगी और फिर ऐसा संग दोष लगा, फिर पांव पीछे खींच जाएगा, फिर पछताएगी ये मैंने क्या किया, उसके बाद फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। तो इस कसम कसम में बहुत टाइम वेस्ट होगा। ये बाबा ने कहा आगे बढ़ने में एक दूसरा अवरोध संग दोष, ये भी हिसाब किताब है, हमको चेक करना है कि हम इतने कमजोर क्यों हैं, इतने भोले क्यों हैं। माया तो कई रूप बना करके आएगी, तो क्या हमने भगवान को पहचान लिया जो अति सूक्ष्म है, तो क्या हम माया के इन रूपों को नहीं पहचान सकते। सबसे डिफिकल्ट बात थी, हमने वो कर ली, दुनिया में कोई भगवान को नहीं पहचान पाया, हमने उसको पहचान लिया। तो ये जो संग दोष वाले लोग हैं, छदम रूप धारण करके आते हैं, मुझे बहलाते फुसलाते हैं किसी भी रूप में, तो मैं इनसे क्यों प्रभावित होता हूँ। किसी को बहुत बाहर की किताबें पढ़ने का शौक होता है, किसी को और कई प्रकार के शौक रहते हैं, तो ये सब के सब संग दोष। बाबा ने कहा सुनो भी एक मुझसे, खाओ भी मेरे साथ, रहो भी मेरे साथ, सर्व संबंधी भी मुझे बनाओ और आपका संसार भी मैं हूँ, सारे सुख मेरे से लो, क्योंकि बाबा से जो सुख मिलेंगे वो तो परमानेंट है और बाकी जो सुख मिलते हैं वो तो अल्पकाल के हैं, अभी अभी सुख, अभी अभी दुख, धूप छाँव की तरह से। तो वो तो हम 63 जन्मों से ले रही हैं, लेकिन बाबा का सुख तो इस एक जन्म में मिलता है। तो दृढ़ता पूर्वक कि मुझे तो बाबा के संग ही खाना है, बाबा के संग ही रहना है, बाबा ही मेरा खुदा दोस्त है, बाबा ही मेरा सब कुछ है, तो इस दृढ़ संकल्प के साथ हमको संग दोष को खत्म करना है। बहुत करके संग दोष उनको लगता है जिनको एकांत का इतना अभ्यास नहीं है, या जो एकांत में नहीं रह पाते हैं, उन्हें कोई ना कोई साथी चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं सबसे अच्छा कंपेनियन मैं हूँ, वफादार भी और आपके सारे सीक्रेट्स को समा लेने वाला, आपकी बात कहीं भी किसी को नहीं सुनाने वाला और हर मौके पे मौजूद रहने वाला। बाकी संगी साथी कष्ट का समय आएगा तो साथ छोड़ देंगे, अपनी जान को कौन जोखिम में डालेगा। लेकिन बाबा तो जोखिम से जोखिम वाली बात में भी बच्चों के साथ रहता है और उस समय तो ज्यादा मदद करता है। तो फिर हम जिनमें शक्ति नहीं, दो हाथ वाले किसी मित्र साथी का मुंह क्यों देखें, क्यों ना हजार हाथ वाले को अपना साथी बनाएं। बार बार बाबा को कहें बाबा तू ही मेरा साथी है, तू ही मुझे बहुत पसंद है, मुझे तेरे को ही साथी बना के रखना है, मेरे को तेरे साथ में ही बहुत मजा आता है, मेरे को तेरे सिवाय बाकी किसी का भी साथ नहीं चाहिए, हर रूप में आप मेरा साथ निभाने को तैयार हो। बताइए कौन सा रूप जिसे बाबा धारण नहीं कर सकता। तो ऐसे बार बार बाबा से बात करेंगे। कहते हैं अनेक रस होते हैं लेकिन सारे रसों का सार बाबा में है। तो तो जब बार बार बाबा की याद का रस, बाबा के प्रेम का रस, बाबा की शक्तियों का रस लेंगे तो दुनिया के बाह्य मुखी रस खत्म हो जाएंगे और संग दोष से भी बच जाएंगे। और तीसरा बाबा ने कहा वातावरण या वायुमंडल। जैसे कई भाई बहन कहती हैं कि हम जब दुनिया में जाते हैं, समझो किसी का कार्यालय है, ऑफिस है, उसका वातावरण ही ऐसा है, लोग जोर जोर से बोलते हैं, या घूस रिश्वत का माहौल है, या आपस में एक दो से ईर्ष्या द्वेष चलता है, या फिर एक आदमी दूसरे की टांग खींचता है, या फिर सारा दिन बीड़ी सिगरेट शराब पीने वाले लोग वहाँ रहते हैं। इस प्रकार का जो वातावरण है जिसमें एक योगी चाहते हुए भी अपनी स्थिति नहीं बना पाता, योग नहीं लगा पाता, तो उसके मन में ख्याल आता है कि बाबा मैं कितना ना आगे बढ़ जाता अगर मेरे ऑफिस का माहौल सात्विक होता, लोग सात्विक होते तो कितना अच्छा होता, मैं कितना ना आगे बढ़ जाता। और कई घरों का भी माहौल होता है, घरों में भी ज्वाइंट फैमिली हो या सिंगल फैमिली हो, लोग बहुत बाह्य मुखी हो, एक व्यक्ति आध्यात्मिक हो, दूसरा व्यक्ति पूरी तरह से भौतिक हो, एक शांत रहने वाला हो, दूसरा शांति मचाने वाला हो, तो भी वायुमंडल भारी रहता है, शोर शराबा, तो भी व्यक्ति को लगता है कि घर में शांति होती तो मैं ज़्यादा योग लगाता और ज़्यादा मेरी कमाई जमा होती। या जैसे हम सफ़र करते हैं तो सफर में ही कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है, वहाँ भी वातावरण वायुमंडल का असर पड़ता है, तो उसके कारण हम चाहते हैं पर चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक प्रकार का कर्म का हिसाब है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को जितने भी बातें सिखाई हैं वो ऐसी बातें नहीं सिखाई हैं कि जब अनुकूल वातावरण हो तब आप योग कैसे लगाएं। बाबा ने हमको जो भी बातें सिखाई हैं वो यही सिखाई हैं कि जब प्रतिकूल वातावरण हो तब आपको क्या करना है, और प्रतिकूल वातावरण को अनुकूल बनाना, इसी का नाम बहादुरी है, इसी का नाम परिवर्तन है। बाबा कई बार कहते हैं आप अपने आप को कहलाते हो विश्व परिवर्तक, तो विश्व तो बहुत बड़ा है जिसमें 7 कॉन्टिनेंट्स, हम क्या कहते हैं, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। आप जग बदलने की बात कहते हो और अपने ऑफिस को नहीं बदल सकते, आप जग बदलने की बात कहते हो और अपने घर को नहीं बदल सकते, आप जग बदलने की बात कहते हो और जहाँ ट्रैवलिंग कर रहे हो उस छोटे से स्थान को उसको नहीं बदल सकते, तो केवल कहने मात्र हैं या रियल में है, हमको सोचना पड़ेगा। हम कहते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान है, इस बार भी बाबा ने हमको यह स्वमान दिया। 3 प्रकार के अभ्यास बताए, एक अभ्यास निराकारी स्थिति, दूसरा फरिश्ता स्थिति, और तीसरा इस साकार दुनिया में चलते फिरते क्या याद रखना है, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो जब हमको ये स्मृति है तो मास्टर सर्वशक्तिवान का मतलब क्या है, कोई बात असंभव नहीं मास्टर सर्वशक्तिवान के सामने। असंभव भी हाथ जोड़ के कहता है कि अब मैं संभव हो गया हूँ आपके सामने, तो इम्पॉसिबल से जाइए इम्पॉसिबल, क्योंकि शक्ति जो होती है वो मोल्ड करती है, परिवर्तन करती है। तो जब हम सर्वशक्तिवान है, हमारे में शक्ति है, तो हमारे सामने आगे पीछे दाएं बाएं जो भी कुछ है वो क्या करेगा, वो मुड़ेगा, जरूर बदलेगा। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ क्या है, हमारी शुभ भावना में, हमारे विचार में इतनी शक्ति है, जैसे कई गोली होती है ना बड़ी शक्तिशाली, ठीक निशाने पे जाके लगती हैं और जो काम उस गोली को दिया था वो करके ही आती हैं। तो हमारी शुभ भावना के संकल्प में इतनी शक्ति है, मास्टर सर्वशक्तिवान के संकल्प में इतनी शक्ति है कि जब वो आत्मा संकल्प करती है कि इस आत्मा का ये संस्कार, ये स्वभाव बदल जाए, बदले बहुत प्यार से उसके कल्याण के लिए, और बार बार कहती है, थकती नहीं है, और दिल शिकस्त ना हो करके, जैसे बाबा हमें एक बात बार बार सुनाते हैं, बाप समान बन करके, एक बात कही नहीं हुई, 2 दिन बाद फिर इशारा दे दिया, फिर शुभ भावना से इशारा दे दिया। तो जब इतनी शुभ भावनाओं में शक्ति है, सामने वाली आत्मा ना बदले ये हो ही नहीं सकता। उसके पास तो भगवान की शक्ति नहीं है, लेकिन हमारे पास तो भगवान की शक्ति है। तो जिसके पास भगवान की शक्ति है और वो किसी को परिवर्तन न कर सके, ये कैसे हो सकता है? उसकी शुभ भावनाओं की रेजिज तो एक्सरे से भी ज़्यादा ताकतवर होती हैं। जैसे एक्सरे शरीर के अंदर जाके अपना काम कर लेती है ना, तो ऐसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान की शुभ भावनाओं में इतनी शक्ति है कि वो अंदर ही अंदर जा करके उस आत्मा को परिवर्तन कर देती है। संकल्प करो, शक्तिशाली संकल्प, लेकिन कल्याण का और शुभ भावना का, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर स्वार्थ बीच में आ गया, संकल्प की शक्ति केवल 1-2% रहेगी, वो भी खत्म हो जाएगी। स्वार्थ तो सारी शक्ति को खा जाता है। इसलिए बाबा कहती हैं, सदा इस स्वमान में रहो, कैसा भी वातावरण वायुमंडल हो, लेकिन आप अपने स्वमान के निश्चय में रहो कि मैं ये हूँ और मुझे ये करना ही है और ये हुआ ही पड़ा है। अगर मैं नहीं करूँगा तो बाबा किसी और को थोड़े भेजेगा। आपके ऑफिस में केवल एक आप ही हैं, आपके घर में केवल एक आप ही हैं बाबा के बच्चे, तो बाबा ने आपको वहाँ क्यों रखा? क्यों रखा वहाँ पे? एक को ही रखा ना, बहुतों को नहीं रखा ना। एक को इसीलिए रखा कि आपको ही वो काम करना है, आप पे ही भगवान को विश्वास। जैसे सेना वाले क्या करते हैं, बहुत दुर्गम स्थान पे किसी एक शक्तिशाली सिपाही को खड़ा कर देते हैं, यहाँ खड़े रहना, देखते रहना, इधर से भी कोई ना घुसे, इधर से भी ना घुसे। तो सेना ने उस पे विश्वास किया, तभी तो उसको वहाँ खड़ा किया। तो बाबा ने हम पे विश्वास किया, तभी तो हमको उस स्थान पे रखा कि ये कर सकता है, बदल सकता है। तो भगवान को तो हम पे निश्चय ही है, लेकिन हमारा खुद का भी अपने पे निश्चय चाहिए कि बाबा ने मेरे को यही ड्यूटी दी है, यही स्थान दिया है, और मुझे खुद को बदल करके इस स्थान को बदलने के निमित्त बनना ही है। बाबा के थोड़े बच्चे हैं, लेकिन थोड़े बच्चों को ही जिस जिस स्थान पे वो निमित्त है, उन स्थानों पे अपना प्रभाव दिखाना है, ना कि उन प्रभावों से खुद प्रभावित होना है। तो जब ये बात याद रखेंगे तो ये हमारा वातावरण जो हावी होता है वो भी खत्म हो जाएगा। ओम शांति।